पृष्ठ संख्या 115। 1919 और 1923 के बीच का यूरोप। यूरोप में नए राज्य। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदित हुए। ये राज्य थे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। कुछ अन्य राज्य पुराने राज्य में नए क्षेत्र मिलाने से बने, जैसे यूगोस्लाविया। 1922 में आयरलैंड को, जो इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहा था, विभाजित किया गया। आयरिश फ्री स्टेट को अधिराजत्व डोमिनियन का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तर आयरलैंड अलस्टर ने, जिसमें 6 काउंटियाँ थी, ब्रिटेन से अपना संबंध बनाए रखा। बाद में आयरिश फ्री स्टेट ने स्वयं को आयर के नाम से एक संप्रभुता युक्त राज्य आगे चलकर आयरलैंड गणतंत्र घोषित कर दिया। हंगरी और ऑस्ट्रिया दो अलग राज्य बन गए। शांति संधियों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों को जो सीमांकन किए गए, वे तनावों और झगड़ों के कारण बन गए। मध्य, दक्षिणी तथा पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश इन सीमांकनों से असंतुष्ट थे। उनमें से कई असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहे। इस काल से विभिन्न देशों के बीच मित्रता और अनाक्रमण की बहुत सी संधियों और समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, और बाद में इन समझौतों तथा संधियों से संबंधित पक्षों ने कई बार अपनी स्थितियां बदली। इस समय यूरोप के अंदर जो प्रादेशिक विवाद चल रहे थे, वे 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण बने। सर्वसत्तावादी शासनों का उदय। युद्ध के शीघ्र बाद के वर्ष प्रायः प्रत्येक यूरोपीय देश के लिए अशांति के वर्ष थे। युद्ध अपने पीछे अनेक समस्याएं छोड़ गया था। अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी, जिसे नए सिरे से इस तरह संवारना था कि वह शांति काल की आवश्यकताएं पूरी कर सके। युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु और लाखों के अपाहिज हो जाने से उत्पन्न दुख दर्द मामूली नहीं था। जो लोग बच गए थे, उनके सामने अब असैनिक कामकाज में लगने की समस्या थी, यानी वे बेरोजगारी झेल रहे थे। इन तमाम कारणों से व्यापक असंतोष फैला। यूरोप के हर देश में हड़तालों का सिलसिला सा बंद गया, और कुछ देशों में मौजूदा व्यवस्था को क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकने की भी कोशिश की गई। रूसी क्रांति का उदाहरण कई देशों के श्रमिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। साम्यवादी दलों तथा समाजवादी लोकतांत्रिक दलों के कुछ हिस्सों ने भी सोवियत ढंग की क्रांतियों का संगठन करने का प्रयत्न किया। क्रांति का सबसे गंभीर विस्फोट जर्मनी में हुआ। हंगरी में वेला कुन के नेतृत्व में 1919 में एक क्रांतिकारी सरकार सत्ता में आई, लेकिन 1923 तक यूरोप के अन्य भागों में समाजवादी क्रांति के सफल होने की संभावना बिल्कुल तिरोहित हो चुकी थी, और हंगरी के क्रांति भी सिर्फ 5 महीने टिक पाई थी। इस स्थिति का कारण यह था कि समाजवादी दलों तथा आमूल परिवर्तनवादी मंडलियों में बहुधा एकता का अभाव था। बहरहाल, क्रांति की संभावनाओं के मिटने का नतीजा यह हुआ कि कई देशों में लोकतंत्र विरोधी तथा सर्वसत्तावादी शक्तियां प्रबल हो उठी, और 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों तक यूरोप के कुछ गिने चुने देश ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक शासन पद्धति को बरकरार रख पाए। हंगरी में एक सर्वसत्तावादी सरकार सत्तासीन हो चुकी थी, जिसका अभिभावक या संरक्षक हार्थी था, रोमानिया और यूगोस्लाविया। सर्वसत्तावादी राजतांत्रिक सरकारें प्रतिष्ठित हो गई। पोलैंड में जोसेफ पिलसुद्स्की के अधीन एक तानाशाही सरकार ने सत्ता हत्या ली। यूनान में राजतंत्र फिर से कायम कर दिया गया था, लेकिन कई वर्षों तक वहां की राजनीतिक स्थिति डवाडोल रही। राजा बदलते रहते थे और सेना के जनरल तख्ता पलट करते रहते थे। 1936 में जोआनस मेटाक्सस के नेतृत्व में वहां फांसीवादी तानाशाही स्थापित हो गई। स्पेन का शासन राजतांत्रिक था, लेकिन वहां जनरल मिगुएल प्राइमो डी रिवेरा ने 1923 में सैनिक तानाशाही कायम की। यह तानाशाही 1930 तक चलती रही और 1931 में जब राजतंत्र विरोधी शक्तियों ने चुनावों में भारी विजय प्राप्त की तो स्पेन एक गणतंत्र बन गया। इस काल की सबसे गंभीर घटना इटली में फांसीवादी तानाशाही की स्थापना थी, जिसका विवरण अलग से दिया जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया जिन देशों ने अपने यहाँ सर्वसत्तावादी सरकारें कायम नहीं होने दी, उनमें स्कैंडिनेवियाई देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया थे। लेकिन इन देशों को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में 20 लाख बेरोजगार लोग थे। लेबर पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाने, अमीरों पर भारी कर लगाने, मजदूरी बढ़ाने, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम आरंभ करके आवासों की कमी को दूर करने आदि के लिए मुहिम चला रखी थी। इन सरगर्मियों के फलस्वरूप लेबर पार्टी की सरकार, जो 1924 के आरंभ में पदासीन हुई थी, ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी और वह अपने वादों में से बहुत कम को ही पूरा कर पाई। इस काल में फ्रांसीसी सरकार पर बड़े उद्योगपति और बैंकर हावी थे। फ्रांस की महत्वाकांक्षा यूरोप के परम शक्ति बनने की थी। इस उद्देश्य से उसने जर्मनी के संसाधनों को अपने नियंत्रण से लाने की कोशिश की। नवोदित राज्य चेकोस्लोवाकिया को गणतंत्र घोषित किया गया, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति तामस मसारिक बना। 1919 में चेकोस्लोवाकिया ने एक संविधान बनाया। वहाँ अनेक महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए और जहाँ पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के ज़्यादातर देश दो युद्धों के बीच के काल में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहे, वहाँ चेकोस्लोवाकिया का तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। वाइमार गणतंत्र। जर्मनी में 1919 में एक संसदीय गणतंत्र स्थापित किया गया। इसे लोग वाइमार गणतंत्र के नाम से जानते हैं, जिसका कारण यह है कि वाइमार नगर में ही उस संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें नया संविधान तैयार हुआ। इस संविधान में अनेक विशेषाधिकारों से संपन्न एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संसद के प्रति जिम्मेदार एक चांसलर तथा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित राइक्सरा नामक संसद की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा जनता की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा का भी विधान किया गया था। जर्मनी में थोपी गई शांति के खिलाफ बहुत असंतोष था और वर्साय की संधि में समाविष्ट कई धाराओं को लगभग सभी लोग अन्यायपूर्ण मानते थे। इसके बावजूद उग्र राष्ट्रवाद का विरोध करने वाले समाजवादी लोकतांत्रिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी प्रबल राजनीतिक दलों के रूप में उभरे। समाजवादी लोकतांत्रिक दल 1930 तक जर्मनी के शासक दलों में से एक था। साम्यवादी दल ने 1923 में क्रांति करके एक और प्रयत्न किया था, जो विफल हो गया था। इस बीच सर्वसत्तावादी मंडलियां और दल उभरने लगे थे। वे लोकतंत्र के निंदक थे, वर्साय संधि को अस्वीकार कर देने की हिमायत करते थे और युद्ध की महिमा का बखान किया करते थे। उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर उसके स्थान पर तानाशाही स्थापित करने के षड्यंत्र रचे। उन्हें बड़े बड़े व्यवसायियों तथा जर्मन सेना के एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने युद्ध में जर्मनी की हार के लिए यहूदियों और साम्यवादियों को दोषी बताया और देश को उनके प्रभाव से मुक्त कराने के लिए हत्याओं और आतंक की योजनाएं बनाई। 1920 में उन्होंने एक साजिश के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की। एक षड्यंत्रकारी संगठन के स्वयंसेवकों तथा सेना में उनके समर्थकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार को भंग कर दिया गया और काप नाम के एक व्यक्ति के अधीन एक नई सरकार स्थापित कर दी गई। इस घटना की प्रतिक्रिया में सभी समाजवादी तथा लोकतांत्रिक दल एकजुट हो गए। देश में आम हड़तालें आयोजित की गई और श्रमिक लोग षड्यंत्रकारियों से लड़ने के लिए शस्त्र सज्जित हो गए। शीघ्र ही षड्यंत्रकारियों को खदेड़ दिया गया। 1919 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल का गठन किया गया था, जिसे संक्षेप में नाजी दल कहा जाता था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में इस दल ने भी 1923 में एक विद्रोह करने की कोशिश की थी, जिसे दबा दिया गया। वाइमार गणतंत्र की आर्थिक समस्याएं। वाइमार गणतंत्र जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम करने में तो सफल हो गया था, लेकिन उसे गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्साय संधि की कुछ धाराओं तथा कुछ अन्य यूरोपीय शक्तियों के रवैये के कारण ये समस्याएं और भी गंभीर हो गई थी। जर्मनी को मित्र शक्तियों की क्षतिपूर्ति के तौर पर 600 करोड़ पाउंड देने थे। 1921 में उसने 5 करोड़ पाउंड की पहली किस्त चुका दी, लेकिन आगे की किस्तों की पूरी अदायगी करने में वह असमर्थ था। सीधी सी बात यह थी कि इस दायित्व को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन ही नहीं थे। बेकाबू मुद्रा स्फीति के कारण जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। 1921 के अंत होते होते जर्मन मुद्रा मार्क का मूल्य गिरकर पहले के मुकाबले पांचवां हिस्सा रह गया था। पहले 20 मार्क एक ब्रिटिश पाउंड के बराबर होते थे, अब 1,000 से भी अधिक मार्क एक पाउंड के बराबर हो गए थे। 1922 में उसमें और भी गिरावट आई। जनवरी 1923 में बेल्जियम और फ्रांस की सेनाओं ने रूर घाटी पर कब्जा कर लिया, जो जर्मनी के कोयला तथा धातु उद्योगों का केंद्र थी। उन्होंने यह कार्रवाई जर्मनी के कोयले और इस्पात से अपनी क्षतिपूर्ति की रकमों की भरपाई के लिए की थी, लेकिन जर्मन श्रमिकों ने उनसे सहयोग करने से इनकार कर दिया और वे हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अनाक्रमक प्रतिरोध का सहारा लिया, जिसमें उनकी सरकार ने भी उनका समर्थन किया। जर्मन सरकार ने बेशुमार कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जिससे भारी संकट उपस्थित हो गया। नवंबर 1923 तक जर्मन मुद्रा कौड़ी के मोल की भी नहीं रह गई थी। अब एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत 5 अरब मार्क हो गई थी। 1923 के अंत में एक मुद्रा सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। सुधार अनिवार्य हो गया था, लेकिन जर्मन लोगों के कई वर्गों के लिए वह विनाशकारी साबित हुआ। यह गया कि नई मुद्रा का चलन आरंभ कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि लाखों लोगों की बचते देखते देखते हवा हो गई। सबसे बुरा हाल मध्य वर्ग यानी वेतन भोगी लोगों का हुआ। लाखों लोग अचानक मुफलिस हो गए। इस विपत्ति से सबसे ज्यादा लाभ नाजी दल को हुआ। हताश होकर अपने प्राण के लिए बहुत से लोग इस दल की ओर उन्मुख हुए। 1924 में संयुक्त राज्य और अन्य देशों से मिलने वाले ऋणों से जर्मनी ने नए सिरे से अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना आरंभ किया और साथ ही क्षतिपूर्ति की रकमों में भी अदा करने लगा। लेकिन जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने अन्य देशों के साथ जर्मनी को भी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया, तो अंत में क्षतिपूर्ति की राशियों की अदायगी बंद कर दी गई। इटली में फांसीवाद। यूरोप के अन्य देशों की तरह इटली में भी युद्ध के शीघ्र बाद के वर्षों के दौरान बेरोजगारी और जनक्षोभ व्यापक रूप से फैला हुआ था। समाजवादी आंदोलन एक प्रबल शक्ति के रूप में उभरा था, हालांकि तरह तरह के आंतरिक विभेदों के कारण उसकी प्रभावशीलता में कमी आ गई। इस बीच इटली में एक लोकतंत्र विरोधी हिंसक आंदोलन अर्थात फांसीवादी आंदोलन का जन्म हो चुका था। राष्ट्र के शत्रु माने जाने वाले लोग, खासकर समाजवादियों, साम्यवादियों तथा श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलनों ने नेताओं को आतंकित करने के लिए सशस्त्र दल खड़े किए, जो फांसी कहलाते थे। प्राचीन रोम साम्राज्य का वैभव उनकी प्रेरणा का स्रोत था और इटली की विगत महानता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए वे हिंसा तथा युद्ध की पूजा का प्रचार करते थे। इटली के शासक वर्गों ने अपने देश को मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में झोंक दिया था। युद्ध समाप्त हुआ तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इटली की औपनिवेशिक तथा महान शक्ति कहलाने की अपनी महत्वाकांक्षा थी, जिन्हें मित्र शक्तियां संतुष्ट नहीं कर पाई। यूरोप में तो उसे ऑस्ट्रिया के कुछ प्रदेश मिले थे, लेकिन उपनिवेशों में हिस्सा पाने की उसकी आकांक्षा अतृप्त रह गई थी। शासक वर्गों को फांसीवाद आंदोलन के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का एक उपकरण नजर आया। देश के अंदर फांसीवादी आंदोलन को एकमात्र ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा था जो उन वर्गों को सामाजिक क्रांति से बचा सकता था। नवंबर 1921 में राष्ट्रीय फांसीवादी पार्टी स्थापित की गई, जिसका नेता वेनितो मोसोलिनी हड़तालें तोड़ने और साम्यवादी तथा समाजवादी नेताओं की हत्या कराने के लिए हजारों काली कुर्तीधारी ब्लैक शर्ट भर्ती किए गए। फांसीवादी आंदोलन की लोकप्रियता इन सशस्त्र गिरोहों तथा शासक वर्गों अर्थात उद्योगपतियों एवं बड़े जमींदारों के दायरे तक ही सीमित थी, लेकिन बढ़ते हुए फांसीवादी खतरे के खिलाफ को जाने वाली हड़तालें और प्रदर्शनों को कुचलने में वे कामयाब रहे। सरकार बढ़ती हुई फांसीवादी हिंसा की मूक दर्शक बनी रही। फांसीवादी 1919 में संसद में एक भी स्थान नहीं जीत पाए थे। 1921 में उन्होंने 35 स्थान जीते, लेकिन जन समर्थन प्राप्त करने में, खास प्रगति करने में फांसीवादियों की नाकामयाबी के बावजूद शासक वर्ग उनसे साठगांठ करने से बाज नहीं आए। फांसीवादियों ने बोलोना और मिलान नगरों पर जबरदस्ती दखल जमा लिया। 24 अक्टूबर 1924 को उन्होंने रोम की ओर से एक प्रयान मार्च का आयोजन किया। इन सशस्त्र प्राणियों को कुचलने के बदले सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इटली के राजा ने वेनितो मुसोलिनी को, जो स्वयं इस प्रयाग में शामिल भी नहीं था, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उसने शीघ्र ही तानाशाही अधिकार हस्तगत कर लिए और काली कुर्ताधारी गिरोहों द्वारा मचाए गए आतंक के बीच 1924 में चुनाव करवाए। जब जिया सोमो मैतियोती नामक एक समाजवादी सांसद ने संसद में चुनावों के दौरान फांसीवादियों द्वारा मचाई गई हिंसा के बारे में बोलने की हिम्मत की, तो उसकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद समाजवादियों, साम्यवादियों तथा अन्य राजनीतिक विरोधियों की सुनियोजित ढंग से हत्या कराने का सिलसिला चल निकला और 1926 में सभी गैर फांसीवादी दलों तथा संगठनों को अवैध घोषित करके भंग कर दिया गया। इतालवी फांसीवादियों द्वारा अपनाए गए तरीकों का अनुसरण अन्य देशों में भी किया गया और उनमें से कुछ देशों में ये तरीके सफल रहे।